नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल के मंत्र का स्मरण करते हुए उन्हें स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी में आज श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वदेश में तैयार उत्पादों को खरीदने से कारीगरों के परिश्रम का सम्मान होगा और युवा उद्यमों के सपनों को पंख भी लगेंगे।
आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली है। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो GST बचत उत्सव भी चल रहा है। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए।
छठ पूजा के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये पूजा एक वैश्विक उत्सव में बदल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस महापर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास कर रही है।
छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है बल्कि दुनिया भर में इसकी छटा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है।
आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया, जिसमें खादी सबसे प्रमुख थी। प्रधानमंत्री ने विजयादशमी के आगामी पर्व का भी उल्लेख किया और कहा कि इस बार का दशहरा काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पूर्व जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, उस समय देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था और देशवासी हीन भावना से ग्रस्त थे। श्री मोदी ने नौसेना की 2 बहादुर अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा की उपलब्धि की चर्चा की, जो नाविक सागर परिक्रमा के दौरान 8 महीने तक समुद्र में यात्रा करती रहीं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि भाषाओं और बोलियों की विविधता के बावजूद भारत एकजुट है, क्योंकि ये धर्म के सूत्र से बंधा है। आज पटना में साहित्य अकादमी के कार्यक्रम उन्मेष के 3रे संस्करण के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि देश की भाषाएं, साहित्य और संस्कृति अभिव्यक्ति के साझा मूल्यों को दर्शाती हैं। तमिलनाडु सरकार ने करूर में एक रैली में हुई भगदड़ की दुखद घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इस रैली में 40 लोगों की जान चली गई और 80 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना कल अभिनेता से नेता बने और TVK के संस्थापक विजय के स्वागत में आयोजित विशाल सभा के दौरान हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के तिरियारपानी के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 माओवादी मारे गए हैं। इन माओवादियों पर 14 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से 1 SLR, 1 राइफल, 1 12 बोर की बंदूक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीट, राजस्थान की अंता सीट, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरन तारण, मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। BCCI मुख्यालय में आयोजित वार्षिक आम बैठक में आज नए पदाधिकारियों के नामों पर अंतिम मोहर लगी है। बोर्ड के 37वें अध्यक्ष बने मन्हास अब रोजर बिन्नी की जगह लेंगे। एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।